ये आकाशवाणी है, अब आप अरुण कुमार से समाचार सुनिए। पाकिस्तान ने कल रात करीब 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लेह से सरक्रीक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोनों को मार गिराया। नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरेशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने समूची पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाने की कोशिश की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का लक्ष्य वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी हासिल करना था। उन्होंने कहा कि ड्रोनों के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि ये तुर्की में बने असगार्ड सोंगर ड्रोन थे। कर्नल सोफिया कुरेशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई की शाम को अकारण ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान अपना सिविल विमानन क्षेत्र खुला रखा। उन्होंने नागरिक विमानों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर दागे गए और इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए गोले बरसाए, जिनमें कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई गई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि हमलों से इनकार करना पाकिस्तान की दोहरी नीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का माकूल जवाब है।
The Jaish e Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. The attack on that facility of the Jaish e Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident.
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठकें की। पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी हताशा में वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी और बेबुनियाद तस्वीरों और वीडियो से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान ने एक और हास्यास्पद हरकत करते हुए भारत के खिलाफ शेखी बगारने के वीडियो गेम की क्लिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें फर्जी रॉकेट और मिसाइल उड़ते नजर आ रहे हैं और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव से संबंधित है। पाकिस्तान के लफाजी का एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें ढाका के एक वीडियो को जम्मू में किए गए पाकिस्तानी हमले के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने लेबनान में 2020 में हुए एक विस्फोटक हमले के वीडियो का इस्तेमाल कर यह फर्जी दावा किया है कि उसने भारत पर मिसाइल हमला किया है। ये सब कोशिशें दिखाती है कि पाकिस्तान की सूझबूझ पर पत्थर पड़ गए हैं और बदहवासी में उसे कुछ सूझ नहीं रहा और वे हताशा में बचकानी हरकत कर रहा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना PIB फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग न करने को कहा है। केंद्र ने सभी राज्यों से आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा प्रमुखों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने आज इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा। इधर भारतीय फिल्म जगत भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में एकजुट है। अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, विक्की कौशल, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर, मोहनलाल, आर माधवन, सामंथा प्रभु और रणवीर सिंह सहित कई कलाकारों ने सशस्त्र बलों के समर्पण और सेवा के लिए सम्मान तथा प्रोत्साहन के संदेश साझा करके अपना समर्थन व्यक्त किया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 सदस्य देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है। सरकार ने 24 हवाई अड्डों को बंद रखने की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट के लिए उसकी उड़ानें 15 मई तक रद्द रहेंगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज कहा कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के दीर्घकालिक संबंध अब और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच जारी जटिल व्यापार वार्ताओं का परिणाम इसी वर्ष निकलेगा। दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह में डॉ जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष फरवरी में यूरोपीय संघ के कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स का दौरा काफी महत्वपूर्ण था। इस दौरे ने प्रमुख नीति निर्माताओं को व्यापक तरीके से जोड़ा है। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 28 अप्रैल को 18 दिन की रिमांड समाप्त होने के बाद राणा को अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले अभिकरण ने राणा की आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांघा ने सिंधु जल संधि के निलंबन से संबंधित समस्या के समाधान करने में बैंक की भूमिका की खबरों को खारिज कर दिया है। श्री बांघा ने कहा कि विश्व बैंक की मध्यस्थ के अलावा और कोई भूमिका नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट आई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 अंकों पर आ गया। निफ्टी भी 266 अंकों की कमी के साथ 24,008 अंक पर बंद हुआ। BCCI ने IPL 2025 के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। BCCI ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से स्थिति के व्यापक आकलन के बाद संशोधित कार्यक्रम और स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष छेट्टी और उन्नति हुड्डा आज ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 24 स्वर्ण सहित 65 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसने 19 रजत और 16 कांस्य पदक भी अपने खाते में डाले हैं। पदक तालिका में उतार चढ़ाव भरे मुकाबले में कर्नाटक ने एक बार फिर राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। कर्नाटक 13 स्वर्ण और 19 रजत सहित 38 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि राजस्थान 11 स्वर्ण और 4 रजत सहित 20 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।